ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چلیے، سبق پہ چلنے سے پہلے تھوڑا سا خلاصہ، اور آج کا ہمارا جو لیسن ہے یہ خاص طور پہ خلاصے میں ہی سمجھنے والا ہے. آج ہم خاص طور پہ طلاق پہ بات کریں گے. جس معاشرے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے جو مذاہب تھے ان میں کیا رواج تھا؟ مشرکین مکہ، یعنی جس کو اس دور کے آپ کہہ لیجئے کہ آئیڈل ورشپر، ان کے اندر طلاق کا کوئی رواج نہیں تھا. یعنی اسلام سے پہلے کے مذاہب کو اگر آپ دیکھیں تو طلاق کے بارے میں افراط اور تفریط تھی. کچھ مذاہب میں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس میں آج بھی آپ دیکھ لیں تو ہندوازم میں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عورت کی جب شادی ہو گئی، اٹوٹ رشتہ ہے، موت ہی ان کو جدا کرتی ہے. بلکہ بعض اوقات تو موت کی صورت میں لڑکی کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس آگ میں شوہر کو جلایا جا رہا ہے اس کی آگ میں اب تم بھی گر کے ستی ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یاد رکھیے کہ جب ایسے پیگن ریلیجن ہوتے ہیں جس طرح مشرکین مکہ کا جو مذہب تھا، تو انہوں نے دین کے اندر اتنی زیادہ کمیاں بیشیاں کر لی ہوتی ہیں کہ اس کا تذکرہ بھی یہاں نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی دوسرا بندہ کوئی بھی بات کر دے تو وہ اس کی بات ہوگی، اللہ کا دین وہ نہیں رہتا. دوسرا، اگر آپ کہیں کہ ابراہیمی مذاہب جو تھے جس میں یہودیت تھی، تو یہودیت کے اندر طلاق کے معاملے میں اس حد تک بات آ چکی تھی کہ انہوں نے بالکل طلاق کو اس طرح سے کر دیا تھا کہ لے ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں. یعنی بالکل ایک آخری ایج پہ چلے گئے، جس کی آپ روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ طلاق کی اجازت نہیں دیتے تھے. دوسری طرف آ جائیں کرسچینس، ان کے اندر طلاق کی کیا نوعیت بن چکی تھی، ان کے مختلف عقائد ہیں. جیسے ایک فرقے کا نام آپ نے سنا ہوگا، کیتھولک ہیں، ایک پروٹیسٹنٹ ہیں. تو پروٹیسٹنٹ کے اندر طلاق لینے کا کیا طریقہ تھا کہ اگر شوہر یا بیوی، ایک تو ہے کہ حق دونوں کو برابر ہے، مرد بھی دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے، جس کو دوسرے ساتھی سے طلاق لینی ہے یا دینی ہے تو اس پہ زنا کا الزام لگاتے تھے کہ پہلے ثابت کریں کہ ہمارے پارٹنر نے خیانت کی ہے، پھر اسے طلاق لی جائے گی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصہ مختصر، جتنے منہ اتنی باتیں. کسی نے اتنا آسان کر دیا، یہودیت میں بلکہ یہ تھا کہ جب انہوں نے طلاق کے وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشن بھلا دیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، تو بالآخر جو ان کے علماء کرام تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، طلاق کیا ہے؟ کھڑے کھڑے جدھر کسی کا دل بھرا فوراً اس کو طلاق دے اور عورت کو گھر سے نکال دے. اور اسی طرح مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے. اب آپ سوچئے، ایک عورت، مرد، گھر کیسے بنتا ہے؟ گھر کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ان سے پوچھئے جن کے پاس گھر نہیں ہوتے. آپ گھر سے یہ بلڈنگ نہیں کہہ سکتے، ہوم سویٹ ہوم جو ہے وہ ہاؤس نہیں ہوتا. آپ ہاؤسز تو بائے کر سکتے ہیں، ہومز کبھی بائے نہیں کیے جاتے. ہومز لوگوں سے بنتے ہیں، ہاؤسز مٹی اور چونے سے بنتے ہیں. دونوں کو دیکھ لیجئے، یہ مٹی چونا بھی جب اینٹ پہ اینٹ، برابری پہ، ہمواری پہ، چھوٹی پہ چھوٹی، بڑی پہ بڑی نہ رکھی جائے تو یہ بلڈنگ بھی نہیں بنتی. اسی طرح انسانی معاشرے میں گھر کی بہت اہمیت ہے، اور اسلام کا مزاج گھر والا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے. آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس بات کی انشاءاللہ تصدیق ضرور کریں گے بعد میں کہ پورے قرآن میں فقہی باتیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ نماز کا پورا طریقہ بھی نہیں ہے، وضو کا طریقہ نہیں ہے، روزے کے کتنے آداب ہیں، کیا ہے، کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس سے، قرآن میں نہیں ہے. سیاست کے کچھ اشارے ہیں، معیشت کے لیے کچھ اصول بتا دیے گئے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، سب میں وہ سب ایک طرف ہے. لیکن نکاح اور طلاق، اس کے لیے اسلام نے دیکھیے گا کہ اب تین چار رکوع تک یہاں، پھر پوری صورت طلاق کے نام پہ قرآن میں صورت ہے، پھر صورت نساء کے نام پہ ایک اور صورت ہے جس میں پورے نکاح کے 1 to 1 پانچ پورے ارکان نکاح کے آپ کو صورت نساء کی روشنی میں پڑھائیں گے. ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ جس سوسائٹی میں گھر نہیں ہوں گے ٹھیک، فیملی سیٹ اپ خراب ہوگا، وہاں کبھی بھی سچا دین نہیں آ سکتا. آج ہم اپنے ارد گرد جو دنیا دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ چیز عام طور پہ دکھے گی. بڑی بڑی مشینیں انہوں نے بنا لی، ٹیکنالوجی کر لی، ہبل بنا لیا، سورج چاند پہ کمندے ڈالنے لگے، لیکن اپنا فیملی سیٹ اپ بریک اپ ہے. आप अपने बच्चे को कुछ कह दें तो बच्चे तलाक दे देते हैं आपको। आप तो यहाँ पढ़ने बैठे हैं शौहर बीवी की तलाक की, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आज हम दुनिया का नक्शा देखें तो आजकल तो बच्चे कहते हैं कि हमें ये माँ बाप नहीं चाहिए और ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। कहानियाँ सुननी है तो मेरे से भी सुन लीजिए, और आपने सुनानी हो तो आपके उस मेरे से ज़्यादा होंगी कि बच्चा माँ को बात करके देखे तो फिर देखो तुम किधर जाते हो। लोग मेरे भी इल्म में इजाफा करते रहते हैं कि ये हालात है कि माँ अपने बच्चे को डांट तक नहीं सकती, और अगर डे केयर वाली कोई औरत जिसके पास बच्चे हैं अगर वो किसी बच्चे को कुछ कह दे तो कहती है 70 ईयर्स तक उसका लाइसेंस खत्म, यानी मिनता हयात, किसने कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक, यानी जहां बच्चे को कुछ कह नहीं सकते तो बच्चे माँ बाप को छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं वी डोंट लाइक यू, वो गैरों को अपना समझ लेंगे, वहां जाके धक्के खाते हैं आंखें खुलती हैं लेकिन माँ बाप को छोड़ते हैं। इसी तरह शौहर और बीवी का तसव्वुर देख लीजिए, पहले तो निकाह से जान छोड़ी, हमें नहीं करना निकाह, करवाते हैं तो कैसे निपटा। तो इस तरह की दुनिया में एक अनारकी फैली हुई थी जिसमें अब इस्लाम हमें एक खूबसूरत लाइफस्टाइल देता है। और मैं कहती हूँ कि आप सब तो मुसलमान हैं ना माशाल्लाह, ये मौजू किसी वक्त सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के सामने रखें बगैर बीच में कोई मजहब की बात लाए, क्योंकि शादी घर तो सबका है, पूरी दुनिया के लॉस ले आए। एक तरफ ये कि औरत तलाक दे सकती है, मर्द भी दे सकता है, खड़े खड़े दे सकते हैं, दूसरी तरफ ये है कोई कहता है कि दे ही नहीं सकते, तीसरा कहता है पहले जिना का इल्जाम लगाओ फिर दो, चौथा कुछ कहता है, और इसके मुकाबले में आइए कि इस्लाम क्या कहता है। हम इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे, इस्लाम के तरीक़ाकार को। ज़ाहिर है कि निकाह से बात शुरू होती है ना, तो हमें निकाह से ही बात शुरू करनी चाहिए। आपको एक प्रेजेंटेशन की रोशनी में हल्का सा दिखाऊंगी, वैसे इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, कल भी आपको कहा गया था, आप उसको सुनते हुए ये सामने खोलें, ये वेबसाइट पे हम डाल देंगे। आप देखिए कि निकाह क्या है, मर्द और औरत के दरमियान एक माहदा है, लड़के और लड़की का चुनाव, उसकी बुनियाद क्या है, दीन ईमान तकवा और नेकी। हम पता नहीं किस पे करते हैं, शक्ल सूरत दौलत बड़े घर की, और 4 दिन में लड़कियों को दुखी करके वापस भेज देते हैं क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती। अब इस पे मैं बात नहीं करूंगी ज़्यादा, हम इस पे बात करते ही रहते हैं और आगे जाके भी होगी, लेकिन निकाह में ये बुनियादें होंगी ना तो इंशाल्लाह तलाक की नौबत बहुत कम आएगी, और जहाँ भी तलाक होगी फिर वो बहुत जेन्युइन होगी, वो रात खड़े उठे बैठे में नहीं होगी कि घर में ज़रा सी ऊंच नीच होगी और लड़की को घर बिठा दिया जाए। इट्स वेरी स्ट्रेंज जो आज दुनिया में हो रहा है। निकाह होता क्या है ये सूरह निसा में हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन इशारतन देख लें, निकाह के अरकान है, 4 रुकन है। रुकन ऐसे जैसे इस टेबल की 4 टांगे, एक टांग भी तोड़ देंगे ना तो टेबल नहीं रहेगा। निकाह होता ही नहीं जब तक बीच में वली ना हो, बाप, बाप नहीं है जिंदा तो भाई, भाई जिंदा नहीं है तो फिर आगे वाले रिश्ते आएंगे, चचा और ताया वगैरह, लेकिन वली के बगैर निकाह नहीं होता। इस्लाम कोर्ट मैरिज को जिना कहता है, और अगर एक लड़का लड़की भाग के ऐसा काम कर लेते हैं तो जितने बच्चे उससे पैदा होंगे वो वलदुस जिना होंगे, उनका नसब नहीं है। दूसरी चीज़ है हक महर, इस पे बातें आएंगी अपनी जगह पे, थोड़ा सा इद्दत के नाते से कल के सबक में भी जिक्र आएगा, ठीक है। हक महर असल में एक अप्रिसिएशन है, एक टोकन मनी है इस मोहब्बत की कि मर्द सीरियस है, सदुका कहते हैं अरबी में हक महर को, मर्द के सच्चे होने की दलील है, यानी आई एम नॉट फ्लर्टिंग यू, मैं सिर्फ तुमसे दिल नहीं बहला रहा, अफेयर नहीं है, इट्स मैरिज। तो उसके लिए हक महर असल में एक सिंपल है इस बात का कि मर्द अपनी इस बीवी इस औरत की अब सारी जिंदगी की जरूरियात पूरी करने में सिंसियर है, सच्चा है। तीसरी चीज़ है गवाहों की मौजूदगी, दोनों तरफ से मिला लें और लोगों के बीच में होगी, ये किस चीज़ की ज़रूरत है। इसकी वजह क्या है कि एक लड़का और लड़की जब साथ होते हैं तो मायूब है। इस्लाम एक गैर महरम के साथ एक लड़की को देखे तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बिजली का तार और पानी साथ हो, इतना बड़ा खतरा है। अब एक लड़की लड़का जो बिल्कुल जानते ही नहीं थे, अब लोगों ने देखा वो साथ खाना खा रहे हैं पी रहे हैं, कहीं देखा तो वो कहीं ग्रोसरी कर रहे हैं, तो दिल में सवाल आ सकता है भाई ये कौन है, व्हाट्स द मैटर। तो कहा नहीं, सबके बीच में इनका निकाह करो, और निकाह की शर्त है कि उसको एक्सपोज करो, कोई छुपा के निकाह नहीं कर सकता कि अकेले में जाके कर लिया तब खत्म है, नहीं बताना पड़ता है, ताकि वजह के गवाहों की हिकमत, अब हिकमत बता रही हूँ कि हिकमत ये है कि जब कोई वो उन दोनों को कोई साथ देखेगा तो फिर उसके ऊपर उनको कोई आर न दिलाए कि तुम कौन हो, ठीक है। अल्लाह के नबी एक मौके पे इतकाफ की हालत में थे, आपकी जौजे मोहतरमा हजरत सफिया आपको मिलने आई, रात का वक्त था तो आप उनको छोड़ने के लिए हुजरे तक गए, तो देखा तो दूर दो तीन लोग खड़े थे जिन्होंने अल्लाह के नबी को रात के अंधेरे में एक औरत के साथ देखा। तो आपने वहां रुक के कहा कि साथियों कोई गलत बात ना सोचना, ये मेरी बीवी है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हम आपके बारे में सोचेंगे। कहा नहीं, शैतान बंदे के जिस्म में ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है, तो वसवसे आते हैं ना, बातें तो निकलती हैं। तो कहा नहीं, सबको बताओ, एक्सपोज करो। फिर चौथी चीज इजाबो कबूल, जिसको कहते हैं निकाह के अल्फाज होते हैं, मुंह से बोलना पड़ता है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक दिल में है तो जुबान पे भी होंगे, जैसे उधर इकराह नहीं ऐसे इधर नहीं। इस पे हम अगर मौका मिला तो एक अलग से किसी भी लॉन्ग वीकेंड्स पे 1 या 2 दिन में हम पूरी किताबो निकाह पढ़ सकते हैं, जिसमें निकाह के बारे में बहुत सारी तफसीलात हैं। और आप चाहें तो निकाह A to Z सीरीज सुने, उसमें बहुत कुछ आपको वैसे भी मिल जाएगा। फिर कुछ निकाह के आदाब हैं। शवाल के महीने में शादी करना मसनून है। हज़रत आयशा कभी रुखसती शवाल में हुई थी। खुतबा निकाह मसनून है। इमाम साहब कोई भी बाप खुद लड़की का पढ़ाए, सबसे बेहतरीन चीज़ है कि बाप खुद निकाह पढ़ाए। अब बाप को तो फिक्र पड़ जाएगी कि मैं निकाह कैसे पढ़ाऊँ, पता नहीं इसमें क्या है। हमने उल्टे सीधे तरीके शुरू किए हुए हैं, लेकिन जो सीधा सीधा काम है वो हमें करना नहीं आता। तो बहरहाल निकाह का एक खुतबा होता है, जिसका मकसद उस वक्त जितने हाजरीन या घर वाले उनको अल्लाह का खौफ दिलाया जाता है, तकवा। फिर निकाह का ऐलान है, दफ और गिना से एक्सपोज किया जाता है कि ये खुशी का मौका है। फिर दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी जाती है, वलीमा है, खुशी मनाना। कुछ काम जो नहीं किए जा सकते निकाह में, औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती, अहले किताब मर्द से शादी नहीं कर सकती, यानी एक औरत मुस्लिम है तो शादी उसकी नॉन मुस्लिम के साथ नहीं हो सकती। इसके बाद आप देखिए कि इस काम के बाद अगली चीज़ क्या होगी, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर चलते हैं। शादी हो गई, शादी के बाद वलीमा मसनून है। मसनून वलीमा क्या होता है कि मर्द की तरफ से अप्रिसिएशन का इजहार है। एक होता है सिर्फ निकाह और एक होता है निकाह के बाद शोहर और बीवी का मिलना, यानी जैसे कि रुख्सती होगी, लड़की माँ बाप का घर छोड़कर अपने शोहर के घर में आ गई। इस्लाम में ये चीज़ अब बहुत ही मानी रखती है कि एक मुसलमान दूसरे की खुशी में भी शामिल हो। हम तो बस दफ़ा इसको ऐसे ही सोच लेते हैं ना रस्मन, हाय फिर शादी पे जाना है, या हमें खुशी हो रही होती है कि अच्छे कपड़े पहनेंगे जेवर पहनेंगे, लेकिन असल में दूसरे मुसलमान की खुशी के लिए जाना, ये एक किस्म का इसके अंदर इजहार आ जाता है। निकाह हो गया, वलीमा हो गया, और निकाह में ये शर्त होती है कि औरत को बसाना है, घर बसाने की नीयत से शादी होगी, ना कि तोड़ने की। शादी सिर्फ 1 महीने के लिए, चूंकि मैं अमेरिका आया हूँ तो मैं 1 महीने के लिए शादी कर लूँ, ये नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी शादी को बिल्कुल शादी नहीं कहता कि जिसमें कोई वक्त की कैद हो। इसी को फिर निकाह मुता कहते हैं लोग, टाइम बाउंड शादी, पेपर मैरिज। इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब होता क्या है कि जब शादी होती है तो उसके अंदर ये सारे काम करने के बाद एक इंसान ये नियत करता है कि हत्तुल वसा तरीके पे मैं घर बसाऊंगा, औरत और मर्द, ठीक है। किसी और नियत से शादी नहीं हो सकती, किसी मुल्क का वीजा लेना, किसी लड़की से ताल्लुक कायम करना, दिस एंड दैट। शादी में ये शरायत है कि घर बसाना है, और ये नहीं कि इतने साल बसाना है, ये 3 साल या 2 माह या दिस एंड दैट, शादी हो गई खत्म। उसके बाद क्या है, हर मुमकिन कोशिश औरत भी करेगी और मर्द भी कि घर बसे। औरत जानबूझ के कोई ऐसी हरकतें करे जिससे मर्द को गुस्सा दिलाए, या मर्द जानबूझ के उसके ऊपर ज्यादती करे कि चलो अब ये आ गई है मेरे घर, इसने अब कहाँ जाना है, और मैं अपनी नजरें इधर उधर रखूँ और घर में कपड़े मिलते रहेंगे रोज साफ और खाना मिलता रहेगा, बस आ गई है घर में, ये जुल्म होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह इस पे सूरत निसा के अंदर बहुत ज्यादा तफसील से अल्लाह ताला ने बात बता दी कि किस तरह से दोनों को आखिरी हद तक इस चीज का मौका दो। अब हुआ क्या कि नहीं बनी, किसी वजह, जिंदगी में मिजाज में खराबी की वजह से गड़बड़ होती है, तो सबसे हल्की चीज जिससे औरत और मर्द के बिगाड़ आते हैं उसको ईला कहते हैं। पीछे आप पढ़ चुके हैं आयत तो उसमें कि बीवी से ताल्लुक कायम ना रखने की कसम खाना, हद इसकी 4 महीने है। 4 माह के बाद या तो शौहर उसके अंदर ही रजू कर ले, नहीं करता तो इन अज़म तलाक, तलाक देनी पड़ेगी। और अगर वो खुद नहीं तलाक देता तो औरत फिर जाके हाकिम वक्त से यानी अदालत से तलाक का मुतालबा करेगी, रजू कर लेगा तो फ़ैन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह माफ़ कर देगा। इंसान के मिजाज में जो चीज़ें होती हैं उसका कुछ ना कुछ असर रहता है। और अगर तलाक हो जाएगी तो तलाक के बाद सेम इद्दत जैसे 3 माह की है वो इसमें भी होगी, ठीक है। अब नहीं बनी, अब बीच के वो सारे मरहले, पूरी सूरह निसा है इस पे, एक बेशतर हिस्सा उसका हर मुमकिन कोशिश। बीवी बिगड़े उसको कैसे संभालना है, सूरत निसा में हम पढ़ेंगे। शोहर का मिजाज बड़ा बिगड़ा हुआ है, बहुत ही शकी मिजाज है, गुस्से वाले हैं और बात बात पे टोकते हैं, वो सूरत निसा में फुल इंस्ट्रक्शंस है, सब कुछ कर लिए। फिर हकम अमिन अहली है, वह हकम अमिन अहली हु की भी है कि दोनों नहीं समझ ले तो एक उसके घर के समझदार लोगों में घुस गए, वो फिर दोनों बैठे। यानी बात को हर मुमकिन पैचअप कराओ, कोशिश करो, नहीं हो रहा अब क्या करें। तलाक के लिए एक लफ्ज मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके साथ भी बोलूंगी, कि तलाक एक इमरजेंसी डोर है। इमरजेंसी एग्जिट कब खुलता है? जब कोई दरवाजा ना खुले, हालात अपसेट हैं। आप इस रूम में रोज आते हैं, आपको पता है कि खास दरवाजे हैं, लेकिन कभी आपने इमरजेंसी एग्जिट से गुजरने की कोशिश की? नहीं करते हैं, आपके इधर हॉल में बहुत सारे हैं। वो क्यों है? किस इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ इमरजेंसी। तलाक का दरवाजा ना तो बात बात पे खुलेगा, ना मर्द धमकी देगा कि महकमे में चली गई तो तलाक, और तेरी माँ घर में आ गई तो तलाक, और तू दरवाजे से बाहर निकली तो तलाक। ये जाहिल मर्द होते हैं, और ना बीवियां बात बात पे ये धमकियां देती हैं कि मैं तेरा घर छोड़ दूंगी और मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, और मेरे अब्बा के घर में तो ऐसा था और तेरे घर में तो सुकून नहीं, और मेरी दोस्त का मियाँ तो इतना अच्छा। ये जुल्म है, देखिए ये जहालत है। जिस तरह बंदे को अल्लाह ताला के साथ बात करना आनी चाहिए ना, इस तरह उसको अपने साथी के साथ भी मिलना आना चाहिए। ये जो हम धमकियां देते हैं, और खास तौर पर जरा सा दीन हमारी जिंदगी में आने लगता है तो हम फिर दूसरों का जीना थोपर करते हैं, तो ये गलत तरीका है। सारी एफर्ट्स के बाद अब लगता है कि नहीं चल सकती, अल्लाह ताला कहते कोई बात नहीं, फिर ये भी ना करो कि फता जरूर है कल मोहल्ला का। कुछ लोग हैं शादी करते हैं और उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसा भी ना करो। फिर क्या करो? कोई बात नहीं, ले लो फैसला। फिर ये नहीं कहना कि अब इधर ही रहो, जियो मरो, जवारी शराबी पापी जो भी है तुमने इसी घर में रहना। नहीं, फिर इस्लाम कहते तोड़ो, रहो तो इज्जत से रहो और छोड़ो तो इज्जत से छोड़ो। इस्लाम ये नहीं कह सकता कि आप घर में रह के हर दिन लड़ें झगड़ें बातें करें, नहीं, पूरी कोशिश के साथ करो। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे? तीन तरीके हैं निकाह को ख़त्म करने के। एक को तलाक कहते हैं। तलाक क्या है? कि शौहर बीवी को तलाक देता है, ठीक है, वो नहीं रखना चाहता। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि बीवी रहना चाहती है कि नहीं, मर्द की तरफ से जब इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं तो इसको तलाक कहते हैं। दूसरा इसका तरीका है खुला। खुला उर्दू में भी बोलते हैं, खला, खुला, खलासी हो गई। खुला कहते हैं बीवी तलाक मांगे, यानी बीवी तलाक दे नहीं सकती, मांग सकती है, तो बीवी की तरफ से तलाक के मुतालबे को खुला कहते हैं। इसके लिए बाज़ुकात तो मर्द ऐसे ही दे देता है कि अच्छा इसको नहीं रहना तो मैं दे देता हूँ। अगर वो हो जाए ना तो फिर उसको कहते हैं खुला बजरिया तलाक, वो तो फिर सिंपल यही बन गई। बाज़ दफा मर्द कहता है नहीं, तो बीवी कहती है अच्छा लाओ मैं हक मेहर छोड़ती हूँ, यानी खरीद लेती है तलाक। और उसमें अच्छा तरीका क्या है कि वो औरत सिर्फ उसको हक मेहर वापस कर दे और मर्द उससे ले ले। ये भी आयत में वाज़े इशारा मौजूद है। अब ये दूसरा तरीका हो गया कि मर्द ने खुशी खुशी दे दी, ठीक है भाई तुम नहीं खुश तो मैं दे देता हूँ, नहीं देता तो फिर तीसरा तरीका फसह। फसह कहते हैं, जैसे कहते हैं ना एक चीज़ को ख़त्म कर देना। शोहर तलाक ना देना चाहे तो फिर बीवी अदालत से जाके रजू करेगी, इसको फसह कहते हैं। खुला क्या है? ये चंद बातें उसके नोट कर लीजिए। बीवी की तरफ से तलाक का मुतालबा खुला है, कब ली जा सकती है? पहली बात है कि शोहर के लिए नापसंदीदगी और कराहत इतनी हो कि हकूक ज़ौजियत भी अदा ना कर सके। देखिए इंसान है ना, आपको कोई एक सूट देता है, आपको नहीं भी पसंद पहन लेते हैं, चलो मोटा तो है, चलो पतला तो है, चलो जिस्म तो ढकेगा। आपको कोई ऐसी चीज़ देता है जो आपकी नहीं भी पसंद की, आप कहते रख लो कुछ तो है ना, दिट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन इंसान इंसान के साथ, दो जिंदा चीज़ों का आपस में मिलना, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी कभी ऐसे हालात हो सकते हैं, कोई वजह नहीं होती, लेकिन औरत को मर्द नहीं पसंद। आज के सबक में हम पढ़ेंगे। और बीवी कहती है कि मैं इसकी ज़ौजियत के हक ही नहीं दे सकती, मैं जहाँ आए थे मैं आपको लिखाऊंगी और इंशाल्लाह आप खुद देख लेंगे कि नापसंदीदगी हद से बढ़ जाए, कि हत्ता के पास रहने में ईमान का खतरा है। एक औरत थी, जमीला बिनते कैस थी गालिबन, तो उन्होंने अल्लाह के नबी को आके कहा था कि मैं अपने शौहर में कोई ऐब नहीं देखती, कुछ कमी नहीं है उसमें, अखलाक का, दीन का, लेकिन मेरा दिल नहीं मिलता। इसी तरह ज़ैनब बिनते जाहश, अल्लाह के नबी के मुंह बोले बेटे जैद की बीवी बनी, सिर्फ उनको एक दिल में ख्याल था कि मेरा शौहर गुलाम क्यों है, मैं आज़ाद कुरैश खानदानी औरत हूँ, बस इस पे उनका दिल नहीं बना। तो हो सकता है, ये बहुत फ्यू केसेस होते हैं, तो फिर ऐसी हो तो उस हालत में फिर और कर सकती है। फिर ये कि ये नापसंदीदगी अचानक ना हो, पहले 5 से साल 10 साल से रह रहे थे, अब कोई और मर्द आ गया बीच में तो अपना मर्द बुरा लगने लग गए, अचानक नहीं हो, बिला वजह ना हो और इतनी ज्यादा हो कि अल्लाह की हदों पे कायम रहना मुश्किल हो। अब क्या करे औरत, मुआवजा दे देगी हक मेहर माफ करके। जो कुछ शोहर ने दिया हो, कोई तोहफा तहाइफ, जो शोहर कहता है कि अच्छा भाई ये मुझे दे दो, क्योंकि अब शोहर ने भी तो आगे शादी करनी है ना, और उसने वहां हक मेहर भी देना है, उसने उस औरत को फिर कोई घर भी बना के देना है। तो ये असल में औरत के तरफ से मर्द को क्या, वरना था आप देखिए ना कि एक मर्द शादी करता है, 5,000 पाउंड लगाए उसने हक मेहर पे, घर बनाने में सब कुछ किया, इधर औरत आती कहती थी तलाक दे दो मुझे, औरत ने तलाक ली। अब ये अगर ना रखा होता बीच में कि औरत से वापस मिलता है तो ले लो, तो फिर मर्द तो फोकट हो गया, अब फिर वो 5,000 पाउंड जमा करे तो शादी करेगा ना। तो इस्लाम क्या करता है, जिसने लगाया है ना उसको दिलवा देता है। अब हमें ये बात समझ नहीं आ सकती, क्योंकि हम तो लगवाते क्या, हम तो लगाते हैं, हम तो अपनी बेटी की शादी पे 5,000 तो छोड़ दीजिए, 50,000 पे भी चले जाते हैं, और फिर जब तलाकें होती हैं बातें बिगड़ती हैं तो फिर रोते हैं, कहते हैं हाय इतने चौ कर दी। यानी कहानियां रोज खुलती हैं मेरे भी आंखों के सामने कि किस तरह एक एक शादी पे करोड़ों रुपया लगता है पाकिस्तान में, और 1 महीना लड़की रह के वापस, सब जेवर कपड़े जोड़े घर वाले सब लड़के वालों ने रख के उनको अकेले भेज दिया, किसको अकल नहीं है। तो जब 15-16 साल की बच्ची ली थी तो उस वक्त क्यों ली थी, तब कहते छोटी हो, और सिर्फ एक बात पे उससे लड़की से नाराज होके कहा घर से चली जाओ, 1 महीने के बाद कैन यू बिलीव, और जोड़े जेवर कपड़े सब कुछ मुतालबों पे मुतालबे, हैरत की बात नहीं है। इतना मादा प्रस्त जब इंसान हो जाए तो वहां क्या रिश्तों का तकद्दस होगा। तो इस्लाम हमें वो दीन नहीं सिखाता जो आज हमारे पास है। अब हो गया खुला, इद्दत कितनी है, एक हैज़ है, ये वन एक पीरियड है, यानी औरत एक दफा पीरियड से फारिग हो जाए पता चल जाएगा कि औरत के पेट में बच्चा तो नहीं है, क्योंकि इद्दत के मसाइल में आप ये बात आगे देख लेंगे कि एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि औरत प्रेग्नेंट ना हो। अच्छा, अब ये खुला से जो तलाक हुई ये कौन सी होती है, इस पे रुजू का हक नहीं है, इसको बायना कहते हैं, ये भी मैं तलाक के तरीके में बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे। यानी आप देखिए ना कि भाई मर्द रुजू नहीं कर सकता, वरना क्या हुआ, आप सोचिए औरत ने मर्द से कहा मुझे तलाक दे दो, मर्द कहता है अच्छा ये 5,000 पाउंड जो है ये मुझे दे दो तो मैं देता हूँ, औरत ने दे दिए, उसने तलाक दी, अब इधर चल रही थी मत फिर रुजू कर ले, तो नुकसान किसका हुआ, औरत के पैसे चले गए ना, चूंकि इसमें तलाक औरत खरीद रही है तो अब मर्द को हक नहीं है इसमें रुजू करने का, ठीक है। और बिला वजह अगर कोई औरत तलाक का मुतालबा करती है तो रिवायत में आता है कि उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। ये तो था औरत की तरफ से, और ये वेरी सिंपल है।